रात, विश्वनाथ का कमरा। रात हवेली पर पूरी तरह उतर चुकी थी। खिड़की के बाहर अंधेरा गाढ़ा था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी और पास के पेड़ की टहनी पर हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। कमरे के भीतर पीली लाइट जली थी, ना बहुत तेज और ना बहुत मध्यम, बस इतनी कि दीवारों पर परछाइयां धीरे धीरे हिलती रहीं। विश्वनाथ बिस्तर पर बैठा था, पीठ हेडबोर्ड से टिकी हुई, हाथ गोद में जुड़े और नजरें सामने थीं, मगर उसका ध्यान कहीं और भटक रहा था। ठीक सामने आईने के पास श्यामली खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और वो उंगलियों से उन्हें सलीके से सुलझा रही थी। कंघी के हर स्ट्रोक के साथ उसकी कलाई हल्की सी घूमती और चूड़ियां मध्यम आवाज करती। विश्वनाथ नजरें बचाकर उसे देख रहा था। सीधे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन देखे बिना भी रहा नहीं जा रहा था। आईने में कभी कभी श्यामली की आंखें उठती और अचानक उनकी नजरें टकरा जाती, बस एक पल के लिए, फिर दोनों अपनी अपनी नजरें हटा लेते। कमरे में अजीब सी चुप्पी थी, न सुकून देने वाली न भारी, बस एक खिंचाव से भरी हुई। श्यामली ने बालों को पीछे किया और पल्लू ठीक करने लगी। उसी पल एक तेज अचानक फड़फड़ाहट की आवाज हुई। आह! उसकी चीख कमरे की चुप्पी चीर गई। एक कॉकरोच उड़ता हुआ सीधे उसकी साड़ी पर आ बैठा। न नहीं, घबराहट उसकी आवाज में साफ उतर आई। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई। विश्वनाथ डर खुलकर बाहर आ गया था, क्योंकि वो सच में कॉकरोच से बहुत डरती थी। कॉकरोच साड़ी पर रेंगने लगा और श्यामली का सब्र टूट गया। हटाओ इसे! झटके में उसने साड़ी पकड़कर खुद से अलग कर दी। वो सोच नहीं रही थी, बस डर के रिफ्लेक्स में काम कर रही थी। साड़ी फर्श पर जा गिरी। विश्वनाथ एकदम खड़ा हो गया। रुको! वो आगे बढ़ा। श्यामली अब सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, सीना दर्द से ऊपर नीचे हो रहा था। विश्वनाथ ने नजरें तुरंत हटानी चाहीं, मगर नजरें मान नहीं रही थीं। कॉकरोच अब भी वहीं था। विश्वनाथ ने जल्दी से रुमाल उठाया, एक झटके में कॉकरोच को पकड़ा और खिड़की खोलकर बाहर फेंक दिया। हो गया, उसने कहा। आवाज में न सख्ती थी न नरमी, बस जल्दी। खिड़की बंद हुई और कमरा फिर से बंद हो गया। श्यामली वहीं खड़ी थी, अब भी कांपती हुई। वो उड़ रहा था, उसकी आवाज़ टूटी सी थी। विश्वनाथ बिना सोचे उसकी तरफ बढ़ा। श्यामली, शांत हो जाओ, कहते हुए उसने उसके कंधे थाम लिए। स्पर्श अचानक था, लेकिन जरूरी। श्यामली अब उसके बहुत करीब थी, इतने करीब कि उसकी सांसें विश्वनाथ की छाती से टकरा रही थीं। वो डर में थी और वही डर उसे उसकी बाहों की तरफ खींच रहा था। विश्वनाथ खुद नहीं जान पाया कि कब उसके हाथ जरा और कस गए। श्यामली का सिर उसकी छाती के पास था, आंखें बंद थीं और सांसें अब भी अस्थिर थीं। मुझे लगा वो मेरे ऊपर वाकई पूरा नहीं हो पाया। विश्वनाथ सब देख रहा था, उसका कांपना, उसका डर और उनकी नज़दीकी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से श्यामली का चेहरा अपने हाथों में लिया, उंगलियां उसके गालों को छू गईं। श्यामली ने आंखें खोली और उनकी नज़रें सीधे एक दूसरे में टिक गईं। वक्त जैसे रुक गया। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी। विश्वनाथ अनजाने में झुकता चला गया, बिल्कुल बिना योजना के। उनके होंठ बहुत करीब आ गए, इतने करीब कि सांसें एक दूसरे में खुलने लगीं। श्यामली होश में नहीं थी, डर, घबराहट और नज़दीकी सब एक साथ थे। उसके हाथ विश्वनाथ की शर्ट में हल्का सा भिंज गए। विश्वनाथ एक पल को रुक गया, उसके भीतर एक आवाज़ चीखी, नहीं। लेकिन शरीर अब भी वहीं था। उसकी नज़र श्यामली की आंखों से नहीं हटी। वो पल बस एक पल था, लेकिन बहुत लंबा। फिर श्यामली का शरीर थोड़ा ढीला पड़ा, डर का असर उतरने लगा और होश लौटने लगा। विश्वनाथ अचानक पीछे हटा, जैसे किसी ने उसे झक छोड़ दिया हो। उसने हाथ छोड़ दिए। मैं माफ़ करना, उसने धीमे से कहा। श्यामली कुछ नहीं बोली, वो बस खड़ी रही और उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होती गईं। उसकी नज़र फर्श पर पड़ी साड़ी पर गई। उसने उसे उठाया और अपने ऊपर लपेट लिया। कमरे में अब एक अलग सी चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जो कुछ कहकर भी कुछ नहीं कहती। श्यामली ने नज़र उठाई, विश्वनाथ अब उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसने बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ, और कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ, विश्वनाथ वहीं खड़ा रहा काफ़ी देर तक। उसकी सांसें अब भी तेज थीं और उस रात नींद दोनों से दूर रही, क्योंकि जो नहीं हुआ था वही सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा था। अगली सुबह, हवेली। सुबह की पहली रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में उतर आई थी। विश्वनाथ की आंखें धीरे धीरे खुली। कुछ पल तक वो बस छत को देखता रहा, खामोश और स्थिर। फिर पिछली रात बिना बुलाए उसके मन में उतरने लगी। श्यामली का डर, उसकी कांपती उंगलियां और वो पल जहां शब्द बेकार हो गए थे। उसने हल्का सा करवट बदली। बिस्तर पर श्यामली उसके बिल्कुल पास सोई थी। एक ही चादर, एक ही तकिया और उनके बीच वो अनकही दूरी जो रात में पैदा हो गई थी। उसका सीना अजीब सा भारी हो गया। ये नहीं होना चाहिए था, उसने खुद से बुदबुदाया। दिमाग तर्क दे रहा था, डर था, घबराहट थी, वक्त गलत था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। वो उठकर बिस्तर के किनारे बैठ गया और हथेलियों से चेहरा ढक लिया। पीछे से चादर की हल्की सी सरसराहट हुई। शामली की आंखें खुल चुकी थीं। वो कुछ देर उसी करवट में चुपचाप लेटी रही। उसकी नज़र विश्वनाथ की पीठ पर टिकी थी, झुकी हुई और थकी हुई। वो बिस्तर से उठी, पल्लू ठीक किया और बालों को एक झटके में पीछे समेट लिया। आईने के सामने रुकी तो चेहरे पर नींद से ज्यादा उलझन थी। आंखों में वो सवाल थे जिनके जवाब वो खुद से भी नहीं चाहती थी। बस, उसने खुद से धीमे से कहा, इतना मत सोचो। गहरी सांस लेकर वो कमरे से बाहर निकल गई। रसोई में सुबह की हल्की सी हलचल शुरू हो चुकी थी। उसने चूल्हा जलाया और केतली रखी। पानी के उबलने की आवाज के साथ उसके भीतर भी कुछ उबलने लगा। कप उठाते वक्त उसके हाथ हल्के से कांप गए। वही एहसास फिर से पास आकर खड़ा हो गया, नजदीकी, खामोशी और वो पल जहां सही और गलत एक दूसरे में उलझ गए थे। नहीं, आंखें बंद करते हुए उसने खुद को टोका, ये सिर्फ एक पल था, डर का असर, बस। उसने चाय में पत्ती डाली और अदरक कूटी। हर काम बहुत सलीके से कर रही थी, जैसे हाथ रुक गए तो मन भटक जाएगा। चाय की खुशबू रसोई में फैल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। सुबह बिल्कुल सामान्य थी, मगर उसके भीतर कुछ भी सामान्य नहीं था। कपू में चाय डालते हुए एक पल को उसका मन रुका, क्या वो उसे चाय दे। अगले ही पल वो खुद पर झुंझला गई। बेवकूफी, वो बुदबुदाई। ट्रे में कप रखते हुए उसने चेहरे पर संयम की परत चढ़ा ली और खुद से बस इतना कहा, आज सब कुछ पहले जैसा ही होगा। लेकिन कहीं बहुत अंदर वो जानती थी, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा।